नमस्कार भारत, तारीख 17 मार्च, दिन बृहस्पतिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। परमाणु और मिसाइल परीक्षण के चलते अमेरिका ने लगाया उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध। नेपाल के पोखरा में सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक, नेपाल में क्या सुषमा और सरताज की मुलाकात होगी?
नेपाल के परराष्ट्र मंत्री जो है कमल थापा, उन्होंने एक रिसेप्शन दिया है पोखरा में, वहाँ पे कुछ मुलाकात तो होगी। यहाँ के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि बात हो सकती है।
इनका भी कश्मीर में आज सुनिए डॉक्टर अग्निशेखर की यादें।
कुछ जुनूनी लड़कों ने मेरे परिचित डाकिये से चिट्ठियों का पुलिंदा छीनकर उसे नदी में फेंक दिया। मैंने देखा तो लगा जैसे आकाश से परिंदे गिर रहे हों।
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, साथ ही अखबार भी होंगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने का एक आदेश जारी किया है। ये प्रतिबंध उत्तर कोरिया में हाल में हुए परमाणु और मिसाइल परीक्षणों के चलते लगाए गए हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका और विश्व समुदाय उत्तर कोरिया की नाजायज परमाणु गतिविधियों को सहन नहीं करेगा। इससे पहले उत्तर कोरिया ने एक अमरीकी छात्र को देशद्रोही काम करने के अपराध में 15 साल बामशक्कत कैद की सजा सुनाई तो अमरीका ने उस पर आरोप लगाया कि उत्तर कोरिया अपने राजनीतिक फायदे के लिए अमरीकी नागरिकों का इस्तेमाल कर रहा है। नेपाल के पोखरा में आज दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की विकास, व्यापार और चरमपंथ जैसे मुद्दों पर बैठक होगी। इस दौरान भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात भी हो सकती है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि अगले हफ्ते राष्ट्रपति ओबामा क्यूबा की अपनी यात्रा के दौरान वहां की जनता को संबोधित करेंगे, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक पल होगा। अधिकारियों के मुताबिक अपनी क्यूबा यात्रा के आखिरी दिन राष्ट्रपति ओबामा दोनों देशों के जटिल अतीत की बात करेंगे। राष्ट्रपति ओबामा और राष्ट्रपति राउल कास्त्रो संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। आयरिश रिपब्लिकन पार्टी सिनफेन के नेता गैरी एडम्स को व्हाइट हाउस में सेंट पैट्रिक्स डे समारोह में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। अमरीकी खुफिया विभाग ने पहले इसे सुरक्षा का मुद्दा बताया, लेकिन बाद में इसे एक प्रशासनिक गलती मानते हुए माफी मांगी। 1.5 घंटे के इंतजार के बाद गैरी एडम्स वापस लौट गए। उन्होंने बीबीसी को बताया, ये प्रोफेशनल नहीं है, ये तहजीब भी नहीं है। जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था उनसे बर्ताव करने की शालीनता भी नहीं। और ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। ये थे गैरी एडम्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूक्रेन के रूस समर्थक विद्रोहियों ने डोनेस्क प्रांत में पासपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है। स्वघोषित डोनेस्क पीपल्स रिपब्लिक के नेता अलेक्जेंडर ज़ाकारेंचेन्को का कहना है कि पासपोर्ट स्वतंत्र देश निर्माण की तरफ एक अहम कदम है और इसका इस्तेमाल पड़ोसी देश रूस तक जाने के लिए किया जा सकता है। मॉस्को ने आधिकारिक तौर पर इस प्रांत को मान्यता नहीं दी है और यूक्रेन इन विद्रोहियों को चरमपंथी मानता है। ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ ने पूर्व राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा की अपनी स्टाफ प्रमुख के तौर पर नियुक्ति का बचाव करते हुए कहा है कि लूला डे सिल्वा एक कुशल राजनीतिक वार्ताकार हैं और उनके सहयोग से आर्थिक सुधार लाने में मदद मिलेगी। उनकी नियुक्ति की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही राष्ट्रपति आवास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उत्तर कोरिया के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ये प्रतिबंध उत्तर कोरिया के हाल में किए गए परमाणु और मिसाइल परीक्षण के चलते लगाए गए हैं। इससे पहले अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर आरोप लगाया था कि वो अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए अमरीकी नागरिकों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उत्तर कोरिया ने एक अमरीकी छात्र को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये पूरा मामला क्या है? बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए प्रगति सक्सेना से।
अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करते हुए कहा है कि उसकी नाजायज गतिविधियों को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल ही में उत्तर कोरिया अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आपत्ति के बावजूद लगातार परमाणु हथियार परीक्षण करता रहा है। नए प्रतिबंधों की घोषणा से ठीक पहले उत्तर कोरिया ने एक अमरीकी छात्र को 15 साल की बामशक्कत कैद की सजा सुनाई। 21 वर्षीय ओटो वाम्बेयर ने जब उत्तर कोरिया के एक होटल में लगे एक राजनीतिक प्रचार वाक्य को उतारने की कोशिश की तो उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि इसके लिए उन्हें 15 साल बामशक्कत कैद की सजा मिल सकती है। वाम्बेयर पर उत्तर कोरिया की सरकार ने शत्रुतापूर्ण और अशांति फैलाने वाली गतिविधियों का आरोप लगाया है। उन्हें 2 जनवरी को उत्तर कोरिया के हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था जब वो अपनी यात्रा खत्म करके वापस अमरीका जाने वाले थे। 1 घंटे तक चली कानूनी कार्रवाई के दौरान वाम्बेयर ने स्वीकार किया कि उन्होंने प्योंगयांग के एक होटल से एक राजनीतिक नारे को उतारने की कोशिश की थी, लेकिन अमरीका का कहना है कि इस काम के लिए वाम्बेयर को इतनी कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉश अर्नेस ने वाम्बेयर की तुरंत रिहाई की मांग करते हुए कहा,
The allegations for which this individual was arrested and imprisoned would not give rise to arrest or imprisonment in the United States.
जिन आरोपों पर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया, उस आधार पर अमरीका क्या किसी और देश में भी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी या सजा नहीं दी जाएगी। हालांकि उत्तर कोरिया ने आधिकारिक तौर पर दावा किया है कि वहां गिरफ्तार किए गए अमरीकी नागरिकों को राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये लेकिन अब साफ होता जा रहा है कि उत्तर कोरिया की सरकार अमरीकियों को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। हम उत्तर कोरिया से पुरजोर अपील करते हैं कि वो वाम्बेयर को क्षमादान दे और उन्हें तुरंत रिहा करे। पिछले कुछ दिनों में उत्तर कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चेतावनी के बावजूद लगातार परमाणु और मिसाइल परीक्षण किए हैं। जाहिर है कि उत्तर कोरिया भी अपनी बात मनवाने के लिए कुछ तो दबाव डालेगा ही। उसने पहले भी अपने विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए विदेशियों को हिरासत में लिया है, लेकिन BBC संवाददाता के मुताबिक ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमरीकी नागरिक को इतनी सख्त सजा दी गई हो।
तो जैसे कि आपने सुना, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने उत्तर कोरिया के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। रुख नेपाल का करते हैं। नेपाल के पोखरा में आज दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। कल इन देशों के विदेश सचिवों ने मुलाकात की थी। बैठक में फैसला लिया गया कि सार्क की बैठक हर 2 साल में नवंबर में होगी। आज सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होनी है। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने 10 मार्च को कहा था कि दोनों देशों की अलग से कोई मुलाकात निर्धारित नहीं है।
No schedule of bilateral meetings has been drawn up. I'm not just responding in respect of Pakistan. We do not have any schedule of bilateral meetings. As you know, they are going for a SAARC-related event.
विकास स्वरूप ने 10 मार्च को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दोनों देशों के बीच में कोई बैठक निर्धारित नहीं है, लेकिन खबरें हैं कि सुषमा स्वराज और सरताज अजीज की मुलाकात हो सकती है। सार्क देशों के सचिव स्तर की बैठक में कल क्या हुआ, हमारे सहयोगी सुशीला सिंह ने काठमांडू में मौजूद BBC नेपाली सेवा के संवाददाता फणीन्द्र दहल से बात की।
कुछ निर्णय हुआ है, वो निर्णय विदेश मंत्री लेवल मीटिंग में पेश किया जाएगा। नेपाली ऑफिशियल्स ने कहा है कि उन्होंने प्रत्येक 2-2 वर्ष में सार्क समिट नवंबर महीने में करने का निर्णय किया है। सभी विदेश सचिवों ने चिंता जताया कि सार्क का समिट जो शिखर सम्मेलन है वो टाइम में नहीं हो पा रहा है, इसलिए सार्क शिखर सम्मेलन को रेगुलर करना चाहिए और सार्क शिखर सम्मेलन का जो डेट है नवंबर महीना में करने का, उसका जिम्मेवारी जिसका टर्न है वो वही राष्ट्र स्वयं करेगा। इसके अलावा विदेश सचिव स्तरीय बैठक में बातचीत हुआ है कि नए विषय में फोकस नहीं करना चाहिए, पुराना जो पास्ट एग्रीमेंट्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन में जोड़ देना चाहिए। करीब करीब 30 विषय में बात हुआ है, ऑफिशियल्स का कहना ये है, मगर उन्होंने सब डिटेल्स अभी नहीं बताए हैं क्योंकि बातचीत होगी और ये जो जो सिफारिश हुआ है उसके बारे में निर्णय विदेश मंत्री के तह में किया जाएगा।
जी, वहीं ये जो सार्क देशों का शिखर सम्मेलन है, कहा जा रहा है कि उसके साइडलाइंस में भारत पाकिस्तान भी मिल सकते हैं, तो इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है आपको?
मैंने यहाँ का इंडियन एम्बेसी के स्पोक्समैन से भी बात किया था इस बारे में, नेपाली ऑफिशियल्स से भी बात किया था। अभी शाम नेपाल के परराष्ट्र मंत्री जो है कमल थापा, उन्होंने एक रिसेप्शन दिया है पोखरा में, वहाँ पे कुछ मुलाकात तो होगी और यहाँ के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि बात हो सकती है।
ये थे बीबीसी नेपाली सेवा के संवाददाता फणेन्द्र दहल। नेपाल के पोखरा में आज दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। अब नजर इस पर रहेगी कि क्या भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की मुलाकात होती है या नहीं।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 19, 25, 41 और 49 मीटर बैंड यानी 5980, 7395, 11995, 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। संसद के बजट सत्र का पहला चरण कल समाप्त हो गया। लोकसभा की कार्यवाही 25 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई। पिछले महीने की 23 तारीख को शुरू हुए बजट सत्र के इस पहले भाग में कुल 10 विधेयकों को संसद की मंजूरी मिली। इसमें रियल एस्टेट, आधार और निर्वाचन कानून में संशोधन जैसे महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। कल संसद ने आधार विधेयक को भी पारित कर दिया। आधार विधेयक पर लोकसभा ने राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को नामंजूर किया और पारित किया। राज्यसभा ने इस विधेयक को 5 संशोधनों के साथ लोकसभा को लौटा दिया था। इस विधेयक को धन विधेयक के रूप में राज्यसभा में भेजा गया था। जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने सब्सिडी के लिए आधार को अनिवार्य बनाने संबंधी प्रावधान की आलोचना की।
पिछले कई सालों से देख रहा हूं, जो बिल इनके बनाए हुए हैं वो पड़े हुए हैं, वो आपके सामने आते हैं कंसीडरेशन के लिए। तमाम विकसित देशों ने बायोमेट्रिक डाटा पर आधारित विशिष्ट पहचान पत्र बनाने का फैसला किया। जब उन्हें इसके खतरे का एहसास हुआ तो उन्होंने प्रोजेक्ट को बीच में रोक दिया।
ये थे जेडीयू सांसद केसी त्यागी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया कि चूंकि सब्सिडी के लिए दिए जाने वाली राशि समेकित कोष से दी जानी है, इसलिए ये धन विधेयक है।
द पर्पस ऑफ दिस बिल इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट मनीज बाय सब्सिडीज। The rest is incidental, so it's a money bill. Merely because
अरुण जेटली ये कह रहे थे कि इसे यूपीए सरकार द्वारा तैयार किए गए मसौदे में सुधार कर लाया गया है और इसमें व्यक्ति की निजता की रक्षा के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। जेटली ने सदन को आश्वस्त किया कि आधार कार्ड की व्यक्तिगत जानकारी केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में ही दी जाएगी। लेकिन आखिरकार संसद से आधार बिल पारित हो गया। ये तो बात हुई भारत की, लेकिन इसी तरह भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अब मोबाइल का नया सिम कार्ड लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपनी बायोमेट्रिक पहचान देनी होगी। इतना ही नहीं, जो लोग पहले से सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भी अपने मोबाइल नंबर बरकरार रखने के लिए अपनी पहचान देनी होगी। बांग्लादेश में इस कदम का विरोध हो रहा है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने बीबीसी बांग्ला सेवा के शुभज्योति घोष से बात की।
देखिए, ये सिम रजिस्ट्रेशन को लेकर बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से काफी चर्चा हो रहा है और इसका विरोध भी जता रहे कुछ संगठन में। इवन हाईकोर्ट ने भी इस मुद्दे पे सवाल पूछा है गवर्नमेंट को कि वो बायोमेट्रिक डेटा उनको क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, ये सब सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश सरकार को कहना है कि जैसे सिम कार्ड को गलत इस्तेमाल हो रहा है, काफी सारे केसों में देखा गया है कि इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, टेररिस्ट ने उनका यूज कर रहे हैं या स्मगलर्स ने यूज कर रहे हैं, क्रिमिनल्स ने यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन जरूरी है और वो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन ही होना चाहिए। जैसे इंडिया में आधार कार्ड के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जरूरी है, मतलब आपको फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा नहीं तो आंखों की स्कैन कराना पड़ेगा, वैसे ही फिंगरप्रिंट जरूरी हो रहा है बांग्लादेश की सिम रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन काफी सारे पब्लिक इससे नाराज भी है।
यानी बांग्लादेश में जिसने अपना बायोमेट्रिक पहचान नहीं दी वो सिम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
हाँ, वही कहना है उनके जो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर तराना हालिम ने, यही बताया है कि पुराना और नई सिम दोनों के लिए ये रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। अगर अब ये रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो सिम कैंसिल हो जाएगा, वो सिम बंद हो जाएगा।
तो रजिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, कंपनियों को करना होगा या सरकार कराएगी?
नहीं, कंपनी को ये जिम्मेदारी है। मोबाइल ऑपरेटर्स बहुत है बांग्लादेश में, जैसे ग्रामीण, रबि, ऐसे लीडिंग प्लेयर्स है मार्केट में, उन सभी को, हर कस्टमर को ये कराना पड़ेगा बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन। जैसे इंडिया में आधार कार्ड कराने के लिए आपको फिंगरप्रिंट देना पड़ता है, आंखों का स्कैन कराना पड़ता है, इधर ये फिंगरप्रिंट आपको जरूरी होगा।
इस बात की गारंटी क्या है कि जो बायोमेट्रिक डेटा अपनी मोबाइल कंपनी के साथ शेयर करेंगे उसका दुरुपयोग नहीं होगा?
इसी मामले में बहुत सारे इंटरनेट एक्टिविस्ट ने बांग्लादेश में भी बहुत गहरा उद्वेग जताई है। मोबाइल कंपनी अगर इनसे अगर ये लीक हो जाए या बेच दिया जाए ये डेटा को, तो ये साबित करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आपको जो डेटा है वो आप ही का है। मतलब ये एक ऐसे राइट्स है, लेकिन इंटरनेट ग्रुप्स जैसे इंडिया में CIS है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के काफी सारे एक्सपर्ट में भी इस बारे में उनका गहरा उद्वेग जताई है कि अगर इनका दुरुपयोग हो जाए तो इनको इट्स इरिवर्सिबल डैमेज, इनको आप कुछ कर नहीं सकते। कोई भी सिटीजन को आइडेंटिटी प्रूफ करना, आइडेंटिटी मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो जाएगा, लेकिन इस बारे में पब्लिक के कोई अंदाजा नहीं है वो कितने इंपॉर्टेंट डेटा मोबाइल कंपनियों को दे रहे, इसके खतरा के बारे में भी वो चेतावनी दे है।
ये थे BBC बंगला सेवा के संवाददाता शुभज्योति घोष। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी सेना की कथित गतिविधियों की खबरों के बाद भारत प्रशासित कश्मीर के अलगाववादियों ने कहा है कि कश्मीर समस्या के समाधान में चीन की भूमिका उनके लिए आशाजनक है। इस बीच विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और अमरीका के बीच बढ़ते सैनिक संबंधों के बाद चीन कश्मीर में चरमपंथ को बढ़ावा देने पर राजी नजर आ रहा है। सुनिए श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
भारतीय सेना ने अभी औपचारिक रूप से ये नहीं माना है कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी सेना के अधिकारी सक्रिय हैं, लेकिन मीडिया में ये खबरें गश्त कर रही हैं कि भारत प्रशासित कश्मीर में नियंत्रण रेखा के नौगाम सेक्टर की दूसरी ओर पाकिस्तानी प्रशासन वाले क्षेत्र में चीनी सेना की गतिविधियां देखी गई हैं। यहां के अलगाववादी ग्रुपों ने इन खबरों के बाद दावा किया है कि चीन कश्मीर में भारत विरोधी अलगाववाद का समर्थन करता है। आम जनता में भी इन खबरों पर खूब बहस हो रही है।
एक कांटा मैं समझता हूं हिंदुस्तान के लिए चाइना बन सकता है, अगर चाइना ने एक कड़ा रुख अपनाया कश्मीर पॉलिसी को लेकर। मैं समझता हूं कि चाइना के इंटरवेंशन से काफ़ी कुछ रुख बदल सकता है कश्मीर की, यहां की लोकल तहरीक का।
मुझे लगता है एज कश्मीरी मैं उसे अच्छा देख रहा हूं, ताकि हमारा मसला जो है, हमारी यहां की रोज़मर्रा जो कश्मीर का इतना सालों से 6 दहाइयों से पड़ा हुआ मसला है, अगर इसमें चाइना से कोई हेल्प आउट होता है तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है।
न सिर्फ वो हमारी हिमायत करते हैं, बल्कि अगर आपको पता होगी कि जब भी यूनाइटेड नेशन में हमारा मसला कश्मीर का मसला उठा, अगर रशिया ने उसके खिलाफ वीटो भी किया, बट चाइना ने कभी उसके खिलाफ वीटो नहीं किया बल्कि हिमायत की। इसलिए उनका वहां पे होना या ना होना उससे कोई ऐसी फर्क नहीं पड़ती।
सईद अली गिलानी की अध्यक्षता वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने पहले ही साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी कश्मीर में चीनी सेना की गतिविधियां कुछ पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में हैं और इन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता नईम खान कहते हैं,
हम चाइना के शुक्रगुजार हैं, ये वाहिद यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर हैं, ये वाहिद मुल्क है जो हमेशा वहाँ कश्मीर की तहरीक की मदद करता आया है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुस्बत रोल को मुस्तकबिल में भी निभाएंगे और गुड सेंस भी अब प्रिवेल हो जाए हिंदुस्तान पर, क्योंकि तब तक बरसगीर में अमन कायम नहीं होगा जब तक मसले कश्मीर को रियासत अवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक हल नहीं किया जाता।
गौरतलब है कि 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच एक समझौते के तहत कश्मीर का अक्साई चिन इलाका चीन को सौंपा गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते स्ट्रेटेजिक संबंधों के बाद कश्मीर के बारे में चीन का सक्रिय होना एक कुदरती बात है। विश्लेषक एडवोकेट तसदुक हुसैन ने 5 साल पहले एक किताब में दावा किया था कि भारत अमरीका के निकट जाने से चीन के साथ लंबी दुश्मनी मोल ले रहा है। इनका कहना है कि इंडिया के प्रभाव को कम करने के लिए चीन कश्मीर की मिलिटेंसी को भी स्पॉन्सर कर सकता है।
हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, और साउथ चाइना सी में हिंदुस्तान जो वियतनाम के करीब आया है, चीन मुमकिन है कि कश्मीर में जो मिलिटेंसी है उसका खर्चा या उसके अखराजात किसी हद तक वो बर्दाश्त कर ले, और उस सूरत में हिंदुस्तान से कश्मीर में अगले 5 साल तक
आम स्ट्रगल का सामना करना होगा। गौरतलब है पिछले कई वर्षों से लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना को चीनी सैनिकों की घुसपैठ का सामना रहा है। हाल ही में चीन ने कश्मीरियों को भारतीय पासपोर्ट के बजाय अलग से एक फॉर्म पर वीजा देने की शुरुआत की, जिस पर भारत ने काफी प्रोटेस्ट किया। विश्लेषकों का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र में चीन का वीटो पावर है, और कश्मीर के बारे में चीन का सक्रिय होना भारत सरकार की विदेश नीति के लिए एक बड़ा चैलेंज है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
और इस रिपोर्ट के बाद अब अखबार के पन्ने पलट लेते हैं। प्रगति, क्या कह रहे हैं आज के अखबार?
जी, आज अखबारों में सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आधार बिल को संसद की मंजूरी मिल गई है और 1 अप्रैल से ये हो सकता है लागू। दूसरी बड़ी खबर है कि देशद्रोह पर अब महाशोर हो रहा है, ये नवभारत टाइम्स के हेडलाइन में पढ़ रही हूँ। भारत माता की जय नहीं बोला तो विधायक, MIM के विधायक निलंबित हो गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ जय हिंद बोलेंगे।
वारिस पठान की बात
जी, वारिस पठान की बात कर रहे हैं। अनुपम खेर भारत माता की जय पर अड़े हैं और राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि देशद्रोह कानून पर विचार होगा। उधर कन्हैया की जमानत जो है वो चीफ जस्टिस, उसकी सुनवाई चीफ जस्टिस तक पहुंच गई है। तीसरी खबर है मोम के होंगे मोदी, तो साथ म्यूजियम में अब मोम के का पुतला उनका भी लगाया जाएगा।
तो ब्रिटेन का म्यूजियम है, ये बड़ा शानदार म्यूजियम है, यहाँ पर तमाम बड़ी हस्तियों के पुतले हैं।
जाटों की धमकी से कॉलेज बंद हो गए हरियाणा में, और रोहतक में नेशनल लेवल के कबड्डी खिलाड़ी का मर्डर हो गया है। पेट्रोल और डीजल दामों में इजाफा हुआ है, पेट्रोल में 3.07 रुपये का और डीजल में 1.90 रुपये का। हिंदुस्तान की खबर है कि कुमार विश्वास पर यौन उत्पीड़न मामले में केस होगा, और जांच समिति ने JNU प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। माँ बाप को दोस्ती के जाल में फंसाकर बच्चों का अपहरण कर रहे हैं, ये राजधानी में अपहरण का नया तरीका है, नई दुनिया की खबर है। और एक और इसमें खबर है, दिलचस्प खबर है कि इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला ऐसा शेल्टर बनेगा जिसमें जिंदगी भर स्पेशल नीड वाले बच्चे रह सकेंगे। जनहित याचिकाओं की बाढ़ पर हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि कोर्ट ही रहने दो, थाना मत बनाओ, ये भी नई दुनिया की खबर है। जनसत्ता की खबर है, जनसत्ता में इस खबर को लिया गया है मुख्यता से कि पेशावर में बस में बम विस्फोट हुआ और 16 की उसमें मौत हो गई। दैनिक जागरण की खबर है कि किंगफिशर हाउस की नीलामी आज होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रगति सक्सेना अखबार की सुर्खियाँ पढ़ने के लिए। और अब हमारी विशेष श्रृंखला इनका भी कश्मीर। BBC हिंदी की इस विशेष कड़ी में आजकल आप सुन रहे हैं अपनी जड़ों से विस्थापित कश्मीरी पंडितों की आपबीती। अब तक राधिका कौल और राहुल पंडिता के पोस्टकार्ड आप सुन चुके हैं, आज सुनिए कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू होने से पहले कश्मीर घाटी के साहित्यिक माहौल के बारे में हिंदी कवि और लेखक डॉक्टर अग्निशेखर की यादें।
वो दृश्य मैं आज तक नहीं भूला हूं। मेरे मोहल्ले के पुल पर कुछ जुनूनी लड़कों ने मेरे परिचित ढाकिए से चिट्ठियों का पुलिंदा छीनकर उसे नदी में फेंक दिया। मैंने देखा तो लगा जैसे आकाश से परिंदे गिर रहे हों। वे हिंदुस्तान की चिट्ठियां थीं जो कुछ दूर तक पानी में तैरी और फिर डूब गईं। उनमें जरूर मेरे नाम की भी कोई चिट्ठी रही होगी, किसी हिंदी लेखक की, कवि की, या किसी पत्र पत्रिका के संपादक की। डाकिया उल्टे पांव भागा और मैंने भी रास्ता बदल लिया था। कभी डॉक्टर नामवर सिंह को कश्मीर आना होता तो पहले मुझे पत्र मिलता, उनके साथ बैठकें होती घर में, कॉफी हाउस में, कहीं भी। बाबा नागार्जुन तो लंबे अरसे तक 1982 में क्षमाकोल के घर में जमे रहे। कितने कविता पाठ हुए, संवाद हुए। कभी कहानीकार ज्ञान रंजन ने मेरे घर के कमरे की खिड़की से दिखने वाली इस नदी में एक दिया शुभकामनाओं का बहाया था अपने एक पत्र में। उस घटना के बाद से मुझे खिड़की से दिखने वाली नदी किनारे मंदिर के आंगन का चिनार किसी उदास पूर्वज सा लगता। पेड़ों के झर रहे पत्ते मुझे उनके आंसू लगते। पहाड़ों की बर्फ कफन की याद दिलाती। आकाश में बादलों से भय लगता। आए दिन अलगाववादियों के जुलूस, हजारों हजार गुस्साए हाथियों की चिंगाड़ के समवेत नारों सा कोलाहल दहला देता। हवा बदल चुकी थी, हमारी साहित्यिक गोष्ठियां ठप थीं। वर्ष 1990 तक आते आते कश्मीर की हवा में घृणा और आतंक के बारूद की गंध भर गई थी। करीबी मित्रों, पड़ोसियों और परिचितों के साथ संबंधों का पारंपरिक रूप शिल्प, वाक्य विन्यास चौंकाने की हद तक बदल चुका था। वातावरण में संशय था, मित्रताएं संदिग्ध हो चली थीं। हवा में जो नारे गूंज रहे थे उनका निहितार्थ हमारे लिए साफ था। हम यानी अल्पसंख्यक जो उनको मान्य नहीं थे, हम जिन्हें हेय और संदेह की नजरों से देखा जाने लगा था। एक नागरिक और एक संवेदनशील हिंदी रचनाकार के नाते हमने अपनी अभिव्यक्ति पर घर से बाहर सेंसर लगाना बेहतर समझ लिया था। कश्मीरी और उर्दू लेखकों, कवियों, नाटककारों तथा बौद्धिकों में रेडियो कश्मीर, दूरदर्शन अथवा कॉफी हाउस की बैठकों में एक ठंडी चुप्पी छाने लगी थी। विभाजन की रेखा खींच रही थी। नाम और धर्म से लेखक मन ही मन अभिहित होने लगे थे। तय था कि अब हमें जड़ से उखाड़ दिए जाने की पूरी तैयारी है।
इनका भी कश्मीर श्रृंखला के तहत आज शाम दिनभर कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर रमेश तामिरी की यादें। सुनना मत भूलिएगा हमारी विशेष श्रृंखला। और अब कार्यक्रम में बात करेंगे खेल समाचारों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चांदना। सबसे पहले बात आईसीसी वर्ल्ड T20 की। मुंबई में कल हुए सुपर 10 राउंड के ग्रुप एक के मुकाबले में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को दी 6 विकेट से मात। क्रिस गेल ने की धुआंधार बल्लेबाजी और 47 गेंदों पर इस विश्व कप का पहला शतक जड़ा।
इस बार पुल किया है और छक्का, और इसी के साथ क्रिस गेल का शतक पूरा।
गेल ने 48 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए और वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के 183 रनों का लक्ष्य बड़ी आसानी से 18.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। गेल ने अपनी पारी में 11 छक्के और 5 चौके जड़े। इससे पहले वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और इंग्लैंड के जोई रूट ने सबसे ज्यादा 48 रन बनाए। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 182 रन 6 विकेट के नुकसान पर बनाए। वहीं आईसीसी वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान ने जीता अपना पहला सुपर 10 मुकाबला। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 55 रनों से हराया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पाकिस्तान के 202 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही बांग्लादेश की टीम को सबसे पहला झटका मिला मोहम्मद आमिर से। आमिर ने सलामी बल्लेबाज सौम्य सरकार को शून्य पर बोल्ड कर दिया। 202 रनों के लक्ष्य का दबाव बांग्लादेश पर बना रहा और बांग्लादेश की टीम 6 विकेट खोकर 20 ओवर में 146 रन ही बना पाई। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और सलामी बल्लेबाज अहमद शहजाद और मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन शुरुआत की और दोनों ने अर्धशतक बनाए। पाकिस्तान 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन पर था और उसके बाद कप्तान शाहिद अफरीदी ने आते ही कहर ढा दिया।
फुल टॉस, 6 रन की बाउंड्री से बाहर अफरीदी।
अफरीदी ने 19 गेंदों पर 49 रन बनाए और उनकी पारी में 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। बल्लेबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन से पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए। और कोलकाता में मौजूद बीबीसी उर्दू सेवा के संवाददाता अब्दुल रशीद शकूर के मुताबिक ये जीत पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाएगी।
बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने और इसी परफॉर्मेंस की पाकिस्तान टीम को जरूरत थी, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान टीम खेली थी एशिया कप में, उससे पहले न्यूजीलैंड के दौरे पर और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में, तो पाकिस्तान की टीम का जो मोराल था वो भी डाउन था, परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, खिलाड़ी फ्रस्ट्रेशन में थे, कप्तान जो थे ऊपर प्रेशर था, तो ये सारी चीजें एक अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से काफी कॉन्फिडेंस मिला है पाकिस्तान को।
उधर बैडमिंटन में भारत के बी साई प्रणीत, अजय जयराम, HS प्रणय और समीर वर्मा ने पुरुष एकल में अपने अपने मुकाबले जीतकर स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जोरदार शुरुआत की और दूसरे राउंड में प्रवेश किया।
अब आपको बता दें कि आज किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर। दिल्ली में पहले विश्व सूफी फोरम का आयोजन किया जा रहा है। 17 मार्च से 20 मार्च तक चलने वाले इस समारोह को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। ब्रसल्स में आज और कल यूरोपीय संघ के नेताओं का एक सम्मेलन हो रहा है। ब्रसल्स में पुलिस अब भी उन 2 संदिग्ध चरमपंथियों की तलाश कर रही है जो कि छापे के दौरान बच निकले थे, और जिनेवा में रूस समर्थक विपक्षी संगठन से मिलने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया में शांति बहाल करने के लिए राजनयिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम में से पहले आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। नेपाल के पोखरा में आज सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की विकास, व्यापार और चरमपंथ जैसे मुद्दों पर बैठक होगी। आयरिश रिपब्लिकन पार्टी सिनफेन के नेता गैरी एडम्स को व्हाइट हाउस में सेंट पैट्रिक्स डे समारोह में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। यूक्रेन के रूस समर्थक विद्रोहियों ने डोनेस्क प्रांत में पासपोर्ट जारी करने शुरू कर दिए हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। एक घंटे बाद विश्व भारती लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।